आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कहा, मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी प्रदेश की जीडीपी। प्रदेश सरकार ने दीपावली पर कर्मचारियों को बोनस देने का किया फैसला, राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी और करहल से बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार ने भरा पर्चा। और श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के सभी मुकदमों पर एक साथ होगी सुनवाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलग अलग सुनवाई की अपील की खारिज। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश की जीडीपी मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2023-24 में 26 लाख करोड़ हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया, जिससे राज्य को 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
आज उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी का है। यूपी की इकोनॉमी कितनी थी, कुल जीडीपी हमारी कितनी थी, 12 लाख करोड़ थी, और आज यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 23-24 में बढ़कर के यह 26 लाख करोड़ की हो चुकी है। और हमारा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक मार्च 2025 में यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रूपये की होगी।
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। सरकार के इस फैसले का राज्य कर्मचारियों ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
प्रदेश के सभी पूर्णकालिक और अजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित अधिष्ठानों के कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले अक्टूबर का वेतन जारी करने के आदेश दिए गए थे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए आज 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अब तक इन सीटों पर कुल 34 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर सपा प्रत्याशी मुश्ताबा सिद्दीकी, कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, कुंदरकी से बसपा प्रत्याशी रफतुल्ला और मैनपुरी की करहल सीट से बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार ने पर्चा भरा। मीरापुर और मझवा विधानसभा के लिए 5-5, कुंदरकी, गाजियाबाद, सीसामऊ और कटहरी से 1-1 और फूलपुर से 3 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट पर अब तक एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। इन सभी 9 सीटों पर 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ ही होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज इस मामले में दूसरे पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। दूसरे पक्ष ने उच्च न्यायालय से इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की अलग अलग सुनवाई करने की अपील की थी। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने बीते दिनों इस अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद ये फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले के वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि अगली सुनवाई 6 नवम्बर को होगी।
जो फूड कंसल्टेशन के खिलाफ रिकॉल अर्जी थी उसको रिजेक्ट कर दिया है और बहरहाल अब सारे जो 15 सूट है उनका ट्रायल एक साथ होगा और अब जो है इसमें आगे हाईकोर्ट प्रोसीड करेगी और इश्यूज फ्रेम होंगे। इश्यूज फ्रेम किसी भी सिविल सूट के लिए जरूरी है और हम सब खुश हैं, ट्रायल एक साथ होगा तो समय की भी बचत है और कंट्राडिक्टरी ऑर्डर्स भी नहीं होंगे। और
2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी मामले में अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। सहारनपुर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहित शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई करते हुए 19 ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए थे। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद के खिलाफ इस मामले में आचार संहिता उल्लंघन, माहौल खराब करने की कोशिश, अनुसूचित जाति के विधायकों के बारे में जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद जगदम्बिका पाल ने आज लखनऊ में कहा कि वक्फ बिल पर हो रही राजनीति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कानून बनने से पहले इस पर विस्तृत चर्चा हो सके।
लोकतंत्र में संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अनवक्फ बनी है। इससे साफ है कि ये कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। ये कमेटी स्पेशल स्पीकर साहब ने कंस्टिट्यूट किया सरकार की पहल पे। सरकार ने कहा कि हम इस बिल को पारित करने के बजाय इसको हम जेपीसी में रिफर करना चाहते हैं कि जिससे कि और डिटेल डिस्कशन डिलीबरेशन हो जाए सभी स्टेक होल्डर के साथ, हितधारकों के साथ। ये जेपीसी कमेटी ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी एमपी बातचीत कर ले। लेकिन जिस तरह से इस जेपीसी में वक्फ पे राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो फिर प्रजातंत्र नहीं है, अराजकतंत्र हो गया, अराजकता हो गई।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने आज भारत ब्रांड चना दाल की बिक्री का दूसरा चरण आरंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ नेफेड के माध्यम से ये बिक्री की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत चना दाल, केंद्रीय भंडार, मोबाइल वैन, नेफेड और ई कॉमर्स के माध्यम से 70 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध होगी। इसके अलावा चना 58 रुपये प्रति किलो, भारत मूंग दाल 107 रुपये प्रति किलो और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलो मिलेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा के परखम गांव में होगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 की विजयादशमी संघ विशेष रूप से मनाएगा।
इस बैठक के लिए देश भर से 393 कार्यकर्ता अपेक्षित है, जिसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार वाजी भी रहेंगे। संघ कार्य के बारे में, यहाँ कार्य विस्तार के बारे में और कार्य के बारे में समीक्षा होगी और आगामी योजनाओं पर व्यापक चर्चा होगी। ये बैठक प्रतिवर्ष होती है और यहाँ पर देश भर से जो कार्यकर्ता आएंगे वो अपने अपने अनुभव भी साझा करेंगे और आगामी विषयों पर चर्चा भी करेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वाराणसी के मालवीय ब्रिज के समानांतर गंगा नदी पर एक नए आधुनिक ब्रिज निर्माण को मंजूरी दिए जाने के बाद आज रेलवे बोर्ड के सदस्य नवीन गुलाटी ने कार्यस्थल का मुआयना किया। इस अवसर पर उन्होंने ब्रिज निर्माण के लिए तैयारियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा।
बहुत ही बड़ा और विशाल ब्रिज होगा जो कि इस जगह की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसकी स्वीकृति हमको मिल चुकी है, इसके डिटेल डिज़ाइन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और डिटेल डिज़ाइन पूरा होते ही इस पर निर्माण का कार्य भी आरंभ किया जाए। इसमें 2 लाइन्स की जगह अब हम 4 लाइनें रखेंगे, तो इससे हमारे को यातायात को सुचारू रूप से चलाने में और आगे ट्रैफिक के विस्तार को देखते हुए बहुत मदद मिली।
पराली जलाने के मामले में बरेली मंडल के 62 किसानों पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। इसमें बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के किसानों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। संयुक्त कृषि निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि कृषि विभाग लगातार किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक कर रहा है। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस कुश्ती प्रतियोगिता में 23 राज्यों के 414 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 222 छात्र और 192 छात्राएं शामिल हैं। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र और प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कहा कि मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी प्रदेश की जीडीपी। प्रदेश सरकार ने दीपावली पर कर्मचारियों को बोनस देने का किया फैसला। राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज 19 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी और करहल से बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार ने भरा पर्चा। और श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के सभी मुकदमों पर एक साथ होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग अलग सुनवाई की अपील की खारिज। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।